लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः आपराधिक तस्करी के शिकार बनने वाले हमारे आप्रवासी भाइयों और बहनों की पुकार सुनी जाए तथा उनकी पुकार हमारे चिंतन का विषय बने। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत संत जोसेफ वाज की जीवनी पर एक लघु चर्चा प्रस्तुत कर रहे हैं। भारत की कलीसिया एक धनी कलीसिया है जिसने कई महान संतों को जन्म दिया है। उन संतों ने भारत का नाम विश्व में ऊंचा किया है। संतों ने अपने सुंदर जीवन से न केवल भारत किंतु विश्वव्यापी कलीसिया को भी प्रेरित किया है। हम उन्हें अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। श्रीलंका के प्रेरित संत जोसेफ वाज मिशनरी बनकर श्रीलंका आए थे, जहां धार्मिक अत्याचार के कारण उन्होंने भिखारी का वेश धारण कर गुप्त रूप से अपनी प्रेरिताई जारी रखी। उनकी तीव्र अभिलाषा थी कि वे बीमार एवं पीड़ित लोगों की सेवा करें। संत जोसेफ वाज का जन्म गोवा के एक ख्रिस्ते परिवार में 21 अप्रैल 1651 को हुआ था। पिता का नाम क्रिस्टोफर वाज और माता का नाम मरियम दे मिरांदा था। पढ़ाई के बाद 1676 में वे पुरोहित बन गए। उन्हें माता मरियम के प्रति विशेष भक्ति थी, जिसके कारण 1677 में उन्होंने अपने आप को माता मरियम के सेवक के रूप में समर्पित किया। फादर जोसेफ वाज को सिलोन में कैथोलिकों की स्थिति के बारे जानकर बहुत दुख हुआ, जो डचों द्वारा सताए जा रहे थे। उन्होंने सिलोन में कार्य करने की अनुमति मांगी, किंतु अधिकारियों ने उन्हें कनाडा के मिशन में भेज दिया। अधिकारियों के आदेश का पालन करने के बावजूद उनका मन दिल सिलोन की ओर लगा रहा। अंततः 1686 में फादर जोसेफ सिलोन प्रस्थान किए। खानाबदोश लोगों के लिए कार्य करने वालों के रूप में अपमानित वे 1687 में तूतीकोरिन बंदरगाह पहुँचे। उसके बाद सिलोन के उत्तर में डचों का गढ़ जफना गए। लंबी और कठिन यात्रा में वे बीमार पड़ गए, किंतु स्वस्थ होते ही अपने मिशन काम को शुरू किया। वे डच लोगों से छिपकर कैथोलिकों से मुलाकात करते थे। एक कैथोलिक परिवार में ठहर कर रात में मिस्सा बलिदान अर्पित किया करते थे। 1689 में वे सिलालाई गांव गए और आसपास के गांव में विश्वासों को उपदेश देना आरंभ किया। उसके एक साल बाद वे कैंडी साम्राज्य के पुतलाम गए, जहां करीब 1000 कैथोलिकों से उनकी मुलाकात हुई, जिन्होंने 50 वर्षों तक किसी पुरोहित को नहीं देखा था। फादर जोसेफ ने कैंडी को अपना मिशन केंद्र बनाना चाहा। उनकी उम्मीद थी कि वे वहां स्वतंत्र रूप से यात्रा करने हेतु सम्राट से अनुमति प्राप्त करेंगे, जबकि उन पर पुर्तगाली जासूस होने का आरोप लगाया गया और दो अन्य कैथोलिकों के साथ उन्हें कैद में डाल दिया गया। जेल में रहते हुए उन्होंने स्थानीय भाषा सिंगली सीखी। जेल के अंदर ही उन्होंने एक छोटा गिरजाघर बनाया और उसे माता मरियम को समर्पित किया। वे अन्य कैदियों को भी सुसमाचार सुनाने लगे। 1696 में कैंडी साम्राज्य पूरी तरह सूखे की चपेट में आ गया था। राजा ने बौद्ध भिक्षुओं को अपने ईश्वर से वर्षा के लिए प्रार्थना करने का आग्रह किया, किंतु जब उनके प्रार्थना करने पर भी वर्षा नहीं हुई तब वे जोसेफ के पास गए। जोसेफ ने मैदान में एक वेदी बनाई और क्रूस स्थापित कर प्रार्थना की। कुछ ही देर में घोर वर्षा होने लगी, किंतु जोसेफ और वेदी वर्षा से नहीं भींगे। इस तरह राजा ने जोसेफ को पूरे राज्य में सुसमाचार प्रचार करने की अनुमति दी। अनुमति मिल जाने पर वे डच क्षेत्र और कोलंबो के कैथोलिकों से मुलाकात करने लगे। 1697 में गोवा से और 3 मिशनरी उनकी मदद के लिए पहुंचे। कोचीन के धर्माध्यक्ष पेद्रो पाकेको ने उन्हें सीलोन के विकर जनरल नियुक्त किया। मिशन कार्य को आगे बढ़ाते हुए जब कैंडी में चेचक का प्रकोप फैला, बीमार लोगों के लिए उनकी सेवा ने राजा को आश्वस्त कर दिया कि वे अपने मजदूरों के बीच फादर जोसेफ को पूरी आजादी दें। जोसेफ ने धीरे धीरे अपने मिशन को श्रीलंका के प्रमुख केंद्रों में स्थापित किया। उन्होंने नया गिरजाघर का निर्माण किया तथा राजा की सेवा की, साथ ही पुर्तगाली किताबों को सिंहली भाषा में अनुवाद किया। इस तरह अपने मिशन कार्य में तेजी लाई। उन्होंने कुछ कुलीन लोगों को भी ख्रिस्त धर्म में शामिल किया। कुलीन लोगों के धर्मांतरण से नए ख्रिस्तों पर अत्याचार होने लगा, जिसके कारण तबियत ठीक न होने पर भी 1710 में फादर जोसेफ वाज ने पेरितिक यात्रा की। उम्र, कार्य और बीमारी उन पर हावी हो चुके थे। उन्होंने 9 दिनों की आध्यात्मिक साधना शुरू की, किन्तु उससे पूरा नहीं कर सके और 7वें दिन 17 जनवरी 1711 को हमेशा के लिए प्रभु के पास चले गए। 13 मई 1989 को संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने उन्हें ईश सेवक घोषित किया। 21 जनवरी 1995 को वे धन्य घोषित किए गए और संत पापा फ्रांसिस ने 14 जनवरी 2015 को उन्हें संत घोषित किया। संत घोषणा के दौरान उपदेश में संत पापा ने कहा, संत जोसेफ वाज में हम श्रीलंका के लोगों के प्रति ईश्वर की भलाई एवं उनके महान प्रेम चिन्ह को देखते हैं। उन्होंने सुसमाचार के रास्ते पर दृढ़ रहकर पौत्रता तथा सुसमाचार में निहित मेल मिलाप के संदेश का साक्ष्य प्रस्तुत किया है, जिसके लिए वे पूर्णतया समर्पित थे। संत पापा फ्रांसिस ने उन्हें एक आदर्श एवं गुरु कहा, विशेषकर 3 कारणों से। संत जोसेफ ने देहातों में जाकर सुसमाचार प्रचार करने के द्वारा पुरोहितों एवं धर्म सामाजिकों के लिए आदर्श प्रस्तुत किया है। शांति की सेवा में धार्मिक भेदभाव से ऊपर उठकर तथा ईश्वर पर अटूट विश्वास रखते हुए कार्य करने एवं मिशनरी उत्साह की मिसाल पेश की है। आज हम भी उन्हीं की तरह उत्साह के साथ कार्य करने के लिए बुलाए जाते हैं। संत जोसेफ वाज के आदर्शों पर चलकर हम अपने विश्वास में दृढ़ रह सकें तथा समाज में शांति, न्याय और मेल मिलाप को बनाए रखने में अपना योगदान दे सकें। श्रोताओ, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत संत जोसेफ वाज के जीवनी पर एक लघु चर्चा सुन रहे थे।
भाइयों को जो किया मेरे लिए किया, प्रभु राज के हकदार हो, प्रभु राज में आओ। भाइयों को जो किया मेरे लिए किया, प्रभु राज के हकदार हो, प्रभु राज में आओ। भाइयों को जो किया मेरे लिए किया।
आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटक मुस्कुराते रहो। लेखिका है भवानी कौल। श्रोताओ, पर्यावरण परिवर्तन का प्रभाव आए दिन कई रूपों में देखने को मिलते हैं। कहीं असमय बारिश, भूस्खलन, सुनामी तो कहीं बाढ़ का कहर। बाढ़ का पानी फसलों को बर्बाद तो करता ही है, गांव घर मोहल्लों में प्रवेश कर जान माल की भारी क्षति पहुंचाता है। लोगों का बना बनाया आशियाना एक क्षण में स्वाहा हो जाता है। लोग किसी तरह अपनी जान बचा तो लेते हैं, पर प्राकृतिक आपदा से हुए अपनी बर्बादी से उबर पाना कुछ लोगों के लिए सालों लग जाता है। समय हर घाव का मरहम होता है, हर दर्द की दवा है। समय के साथ साथ अपने अतीत को भूलकर आगे अपने वर्तमान को सकारात्मक तरीके से जीने की कोशिश ही सही मायने में जीना है। समस्याओं से घबराएं नहीं और सकारात्मक सोच रखें। सफलता की असली निशानी यह है कि चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट हो जो कोई छीन ही न सके। मुस्कुराहट चीजें आसान बनाती है। मुस्कुराहट को अपनी आदत बनाएं। आशा है प्रस्तुत नाटिका आपका मार्गदर्शन कर सके। तो आइए सुनते हैं भवानी कौल का लिखा नाटक सदा मुस्कुराते रहो।
माला, अरे माला, कब तक यूं मुंह लटकाए रहोगी? अरे जो होना था सो हो गया, यूं मुंह लटकाने से काम नहीं चलेगा भाई। पर तुम्हारी खामोशी और ये चुप्पीपन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऑफिस से थका मंदा आया हूं, वहां ऑफिस में ढेर सारा काम, और यहां तुम्हारी ये रोतली सूरत, मुझे ये सब सोच के घर आने की इच्छा नहीं होती।
तुम्हें अपने ऑफिस की और अपनी पड़ी है, यहां सब कुछ बर्बाद हो गया, उसका कुछ नहीं तुम्हें?
तो रो, खूब रो, दिन रात सोते जागते उठते बैठते रोती रहो। रोने से तुम्हें खुशी मिलती है तो चिल्ला चिल्ला कर रो। माना तुम्हारे रोने से या दुखी होने से सब कुछ वापस नहीं आ जाएगा, लेकिन ठीक है, रोना है तो रो।
मुझे भी पता है मेरे रोने से कुछ वापस नहीं आएगा, पर अफसोस तो होता है ना।
अरे तो कब तक अफसोस मनाती रहोगी, अब काम पर लग जाओ। अच्छा देखो, मुझे एक कप चाय बनाकर दे सकती हो? दे दो, बड़ी कृपा होगी।
ये एहसान जताने वाली बात क्यों कर रहे हो? चाय ही पीना है ना, बना दूंगी। सारा सामान बाढ़ में बह गया, उसका तुम्हें जरा भी दुख नहीं?
दुख क्यों नहीं है, एक एक चीज मैंने पाई पाई जोड़कर खरीदी थी। याद करो जब हमने शादी की तो हमारे पास क्या था? एक डबल बेडशीट और दो चार खनकते बर्तन जो तुम्हारे कंजूस माँ बाप ने हमें दिए थे। अरे उस थाली में दाल भी हिलोरे खाती थी।
बहुत को यहाँ से वहां ना ले जाओ तुम, लव मैरिज करने का यही होता है नतीजा। अरेंज करते ना तो शायद कुछ मिल जाता।
हाँ, तुम्हारे प्रिय पापा और मेरे आदरणीय ससुर जी ने कहा था, बेटा हम इतना ही दहेज दे सकते हैं, और दे दिए बिछौना और गृहस्थी के आड़े तिरछे बर्तन। पर इतने में ही अपनी गाड़ी बस चल पड़ी, तब भी मैं खुश था या नहीं, पर फिक्र क्यों पालना?
बाढ़ से सब कुछ तो बर्बाद हो गया, कितनी अच्छी गाड़ी थी, महंगे रुई से मैंने बनवाया था। इधर देखो ये टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सब खराब पड़े हैं। अरे मेरी सारी महंगी साड़ियां खराब हो गई, शिफॉन, कांजीवरम, कोसे और सिल्क की साड़ियां थी, अब वैसी साड़ियां शायद ही मिले।
ओफ हो, बस तुम लोगों में यही एक बात है, साड़ियों के नाम पर आंसू बहाती रहो। आखिर कब तक तुम इस तरह से खफा रहोगी? और देखो ये गुस्सा तुम किस पर उतार रही हो? बाढ़ जो आनी थी सो आकर चली गई। अरे अब तुम लड़ तो नहीं सकती ना, प्रकृति से लड़ने चली हो तुम। ये प्रकृति जो है ना, वो तुम्हारे माँ की माँ है।
अब मैं इस घर में रो भी नहीं सकती, दुख प्रकट नहीं कर सकती। तुम्हें क्या, तुम्हारा कुछ गया नहीं ना? मेरे पास लिपस्टिक की कितनी बड़ी रेंज थी, नेल पॉलिश के सारे कलर्स, और वो मेरे तरह तरह के सेंट और खुशबूदार स्प्रे सब खराब हो गए।
इस दुख में दुखी होकर तुम क्या हासिल कर लोगी? जो चीज खराब होनी थी सो हो गई, अब जीवन भर यही दर्द भीतर लाद कर भला कोई जी सकता है क्या?
हाँ हाँ, तुम्हें किस बात का दर्द है? पूरी गृहस्थी मैंने बड़े प्यार से बसाई थी, एक एक वस्तु जो कीमती थी उससे सजाया और संवारा था, इसलिए मुझे दुख है।
अरे मुझे भी दुख है माला, पर तुम्हारी इस तरह रोनी सूरत लेकर खामोश तो बैठ नहीं सकता। दरअसल क्या है ना, मैं निर्माण में विश्वास रखता हूं, प्रकृति पर भला किसका जोर है, उसका विध्वंस का रोना आखिर इंसान कब तक रोता रहेगा? तुम्हारी बहन को देखो, देखो वह हर पल दुख में सुख में खुश रहती है।
अरे जिज्जा जी, बातों में पूरी चाय ठंडी हो गई है। चलो मैं ऐसा करती हूँ, मैं फिर से गर्म कर देती हूँ।
अरे अब रहने दो जॉली, रहने दो, अब खाने का वक्त हो चला है। ऐसा करो खाना लगा दो, तुम जरा दम मार कर खाना खाएंगे।
खाओ खाओ, जी भर कर खाओ। अब जॉली के सामने मेरा मजाक उड़ाना बंद करो तुम।
चलिए जीजा जी, मजे से खाइए, लगता है खाना टेस्टी है, लगाकर बनाया है मैंने, क्योंकि ना दीदी के जैसा खाना मैं बना नहीं सकती ना।
जॉली, बिल्कुल जॉली हो तुम, जॉली नेचर की हो। हाँ, नाम के अनुरूप। तुमसे जो शादी करेगा ना वो बंदा बड़ा खुश नसीब होगा। खुश मिजाज लड़की हो तुम, हरदम मुस्कुराती रहती हो, गुनगुनाती रहती हो, चहकती रहती हो, खुश रहती हो। तुम्हारी दीदी की तरह रोतली नहीं हो तुम।
मैं कह रही हूँ ना, मेरा मजाक मत उड़ाओ, मैं ऐसी ही हूँ। मेरी चीजों का जाने का दुख है मुझे, इसीलिए दुखी हूँ। जब तक मेरा मन नहीं मानेगा तब तक दुखी रहूंगी मैं।
ओफो दीदी, जीजा जी ठीक ही कह रहे हैं। दीदी बाढ़ से न जाने कितने घर उजड़ गए हैं, कितनों का सामान बहकर चला गया होगा, लेकिन ये सिसकिया लेते रहने से आशियाना क्या दोबारा बसाया जा सकेगा? आप ही बताओ दीदी।
क्या करूं जॉली, मुझसे सारा मंजर भुलाया नहीं जा रहा है। वो सारे दृश्य, कहीं घर भरभरा कर गिर रहा है, कहीं बच्चे बिलख रहे हैं, कहीं जानवर बहे जा रहे हैं, तो कहीं इंसान, तो कहीं लाश पड़े हैं। ऐसा लग रहा था जैसे प्रलय आ गया हो।
अरे माला, तुम सचमुच बहुत भावुक हो, दूसरों का दुख दर्द समझने वाली हो। अब तक मैं यही समझ रहा था कि तुम अपनी लिपस्टिक, साड़ी, बर्तन भांडे, बस इसी को लेकर उदास हो, जो बाढ़ में बह गए। उफ़, मैं तुमको समझ नहीं पाया माला।
मेरा अपना सामान उसका दुख तो है मुझे, क्योंकि तुम तो जानते हो शादी करने के बाद हमारे पास कुछ था ही नहीं। तीन का जोड़कर हमने रैन बसेरा बनाया था, पूरे घर को मेरे दुल्हन की तरह सजा रखा था, और एक पल में सब कुछ आंखों से ओझल हो गया। फिर लोगों की पीड़ा, चीख पुकार मेरे दिमाग में बैठ गया है, मैं भुला नहीं पा रही हूँ।
परमाला, तुम इसे दिल से लगाओगी तो जिंदा कैसे रह पाओगी? उनके बारे में सोचो माला, जिनका घर ढह गया, बच्चे खो गए, माता पिता खो गए। जो अकेले बच्चे हैं वो भी जी रहे हैं ना। जब दुख झेलना ही है तो उसे हंसकर झेलो, रोकर क्या मिलता है हमें। अब लोग फिर से घर बनाएंगे, फिर से बस सब कुछ बस जाएगा, लोग खाएंगे, सोएंगे, गुनगुनाएंगे, जीवन का सफर फिर चल निकलेगा, फिर से नवचेतना, नवजीवन का संचार होगा।
शायद तुम ठीक कहते हो, इंसान को दुख में सुख में सदा मुस्कुराते रहना चाहिए। दुख को हंसते हुए सहने से दुख और हल्का हो जाता है, और यही संसार का सच है।
और इसीलिए मेरी प्यारी प्यारी दीदी, मेरी तरह हमेशा मुस्कुराते रहिए। हाँ, आपके लिपस्टिक भी आ जाएगी, साड़ी भी खरीदी जाएगी, और वो नेल पॉलिश के साथ ना जिया जी, घर की तमाम घरेलू चीजें हमें लेनी है, ठीक है ना?
बिल्कुल, घरेलू चीजों का तो मैं समझा, लेकिन बाकी सामान जो बोल रहे हो उसके लिए तो मैं लुटने के लिए तैयार हूँ भाई।
सदा मुस्कुराते रहो। अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे भवानी कोल, समता बोरेकर और संतोष जोशी। इंदौर के सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।